हरे कृष्णा पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय और हमने तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा था। तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा था। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चांतर नातो न चातर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थम वायनम स्वरूढ़ मूलं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तत्पदम तत्परिमार्गितम यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो इन दोनों श्लोकों का कल हमने अनुवाद और शब्द अर्थ देखा था। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी का तात्पर्य आइए। प्रभुपाद जी के इस अश्वत्थ वृक्ष को इस भौतिक जगत में देखा नहीं जा सकता, इसका दर्शन इस भौतिक जगत में संभव नहीं है, क्योंकि इसका जड़ ऊपर है, तो इसका अर्थ है कि जड़ ऊपर है तो वास्तव में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि जड़ ऊपर है तो वास्तविक वृक्ष जो है उसके दूसरे तरफ है। इसका क्या अर्थ है? अगर जड़ ऊपर है तो वास्तविक वृक्ष उसके दूसरे तरफ है, इसका मतलब सत्यलोक से ऊपर ब्रजा नदी के दूसरे तरफ वैकुंठ लोक को प्रभुपाद जी से कह रहे हैं वास्तविक वृक्ष। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब हम इस वृक्ष में बंधे हुए हैं, जब हम इसी वृक्ष में अटके हुए हैं, तो फिर हम इस वृक्ष कहाँ से शुरू होता है कहाँ अंत होता है ये नहीं जान सकते, कि हम इसी के अंदर फंसे हुए तो कैसे जानेंगे, नहीं जान सकते। परंतु फिर भी इसका कारण जानना चाहिए प्रभुपाद जी के। कैसे जानना चाहिए? बोला तो बहुत सरल तरीका है, मैं मेरा पिता मेरे पिता का पिता, ऐसे हम आगे जाएंगे तो सबका पिता ब्रह्मा तक पहुँचेंगे। भाई सृष्टि कहाँ से पैदा हुई? ब्रह्मा से हुई। नहीं, प्रजापति हुए उसका पिता, हम ये हमारा वंश ये है, तो मतलब हम तो मानो के विश्वामंत्र वंश के हैं, कि वशिष्ठ वंश के हैं, कि ये हमारा गोत्र है, तो वो कहाँ से है? ब्रह्मा का पुत्र। तो ब्रह्मा किसके पुत्र है? गर्भोदक्षाई विष्णु के। तो गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से आया? तो ऐसे अंत तो गत्वा हमको इस वृक्ष के आदि मूल को जानना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम भगवान तक पहुंच जाएंगे तो हमारी खोज जो है वो पूर्ण होगी। हमारी खोज है लिखा परिगार परिमार्गितम का मतलब है खोज करना। तो खोज हमारी पूर्ण कब होगी? जब हम भगवान तक पहुंचेंगे, जो आदि इस वृक्ष का आदि मूल है, जहां से ये वृक्ष निकलता है। अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कैसे वहां पहुंचेंगे? एक 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 शब्द लिखा है, सबको पता है कैसे पहुंचेंगे वहां तक, कैसे पहुंचेंगे भगवान तक। क्या लिखा है देखो, भक्तों के संग से। कैसे भक्तों के संग से? जो भगवत तत्व के ज्ञान को जानते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी खोज है, अतिर इसका अर्थ ये हुआ, जो हमारी खोज है कि इस जगत का जड़ कहाँ है, तो इसके लिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए जो ये ज्ञान जानते हैं, और तब हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। अब भक्तों के संग से हमें मिलेगा क्या? ज्ञान, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी। तो इस भौतिक झूठे प्रतिबिंब जगत से अपने आप वैराग हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। और इसी को लिखा है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो असंग के शस्त्र से प्रभुपाद कहते हैं, असंग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो संग का क्या अर्थ है? इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति। संग का मतलब है इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति। और असंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति के साथ एक दूसरा शब्द भी प्रभुपाद ने लिखा है, वो दोनों नहीं है तो असंग है, और दोनों है तो संग है। क्या है? एक इंद्रिय तृप्ति की और दूसरा भौतिक प्रकृति का प्रभुता या स्वामी बनने का विचार, ये है आसक्ति। दुनिया में आसक्ति क्या है? इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं सब चाहिए और ये सब मेरी है, ये है संग। और असंग का मतलब ये दोनों नहीं चाहिए। इसका अर्थ भौतिक प्रकृति के हम स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी है। हमारी इंद्रियों को तृप्त करने की जगह पे हमें कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, हमें भोग को त्याग के सेवा को सीखना चाहिए, ये इसका अर्थ है। इसलिए हमें त्याग सीखना चाहिए। बोला कैसे? कैसे त्याग सीखेंगे? आध्यात्मिक विज्ञान से। कहाँ से आध्यात्मिक विज्ञान मिलेगा? प्रमाणिक शास्त्र से। और प्रमाणिक शास्त्र कौन समझाएगा? प्रमाणिक गुरु, जो वास्तव में जानता है। तो इसलिए असंगता सीखने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक शास्त्र से आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा। और ऐसे संग और ऐसे सत्संग से, ऐसे संग में, सत्संग से हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, ये उसका फल है। ऐसा संग करेंगे और सत्संग करेंगे, यहाँ डिस्कशन लिखा है, डिस्कशन का अर्थ है सत्संग। इसमें क्या लिखा है? और विचार, जब विचार विमर्श करने, ऐसे कुछ भी लिखा है। भक्तों के संग में सत्संग से का फल क्या है? कि हम परम पुरुष भगवान तक पहुंचेंगे। तब क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में सत शास्त्र को सुनने से पता लगा कि ये भगवान है, तब हमको क्या करना चाहिए? शरणागति। तब भगवान का शरण लेना चाहिए। तब क्या होगा? हम उस जगह पहुंच जाएंगे जो इस प्रतिबिंब जगत से परे है और जहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। अब प्रभुपाद जी साफ लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि इस जगत की जड़ है वास्तव में श्री कृष्ण, और सभी उनसे निकलता है। और कहां लिखा है? अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव। ये श्लोक का भाव है इधर कि सभी भगवान से निकलता है। और फिर कहते हैं भगवान का सहायता प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी और भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे? बोला श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा। भगवान ही सारे भौतिक जगत के विस्तार का कारण है, पहले ही भगवान ने ये बता दिया है। अहम सर्वस्य प्रभव, ये श्लोक आ गया। तो हमें यहां इस अश्वत्थ वृक्ष के सुदृढ़ मूल, जिसका मूल बहुत मजबूत है, उससे अगर निकलना है तो भगवान का शरण लेना पड़ेगा। जैसे हम भगवान का शरण लेंगे, अपने आप भौतिक सारा बंधन मुक्त हो जाएगा। यहां ये श्लोक नहीं दिया है प्रभुपाद जी ने, पर चक्रतीवादपाद ने अपना बलदेव विद्याभूषण ने दिया था। कौन सा? दैवी यशु गुणमयी मम माया दुर्दया ये माम प्रपद्यन्ते वास। अब शरणागति के लिए कौन से लक्षण चाहिए हमको? मन अर्जुन पूछे कि आप कहते हैं शरणागत लेना चाहिए, तब उस धाम में जाएंगे, उस पुरातन पुरुष का शरण लेना चाहिए। तो शरणागति के लक्षण क्या है? तो श्लोक नंबर 5 में है शरणागति के लक्षण। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त काम द्वैर्व मुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त्यमूढ़ा पदमाव्ययन्त। पहला लक्षण है निर्माण, मान शून्यता, ये वही है अमानिता, अमानितो, मान की इच्छा नहीं करना। मान का मतलब सम्मान में नहीं फंसना, अहंकार नहीं करना। अमानितो ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है, और यही तीसरा मुख्य लक्षण समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भी अमानी न तुम कहते। तो अमानीन पहला निर्माण, निर का मतलब नहीं, मान का मतलब अभिमान नहीं करना, इसका मतलब निर्माण। और मोह, निर्माण और मोह, जो मोह में फंस जाता है, निर्माण मोह एक शब्द है कि अहंकार के मोह से मुक्त होना। फिर है जित संग दोषा, दोष के जो संग से जो दोष होता है उसको जीतना। कौन से संग से दोष होता है? घर गृहस्थी पुत्र परिवार धन, ये है संग। मित्र बंधु बांधव, ये है संग। इसमें आसक्ति है दोष, उसके ऊपर जीत, उसको जीतना। जित संग दोषा, तो संग क्या, संग का दोष क्या है? परिजनों में आसक्ति, धन में आ सकती, घर गृहस्थी में आ सकती, ये है संघ का दोष, इसको है जीतना। मुख्य क्या है काम? ये सब कैसे संभव है? अध्यात्म नित्य। कभी हम अपने विचार से कहते हैं कि ये जो बीच में शब्द है अध्यात्म नित्य, ये एक करने से दूसरे सब करना आसान हो जाएंगे। अध्यात्म नित्य का मतलब नित्य अपने को आत्मा मान के, भगवान को परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ सखा मानकर और उसकी सेवा में लगना, ये है अध्यात्म नित्य। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना, ये है अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य का मतलब भक्ति में अगर लगे रहेंगे तो बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे, फिर अलग गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म नित्य सबसे मुख्य है। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, भगवत चिंतन, ये है अध्यात्म नित्य। और फिर है विनिवृत्त कामा, काम का मतलब इच्छाएं हैं, और विनिवृत्त का मतलब विशेष रूप से सारी ही भौतिक कामनाओं से अपने आप को मुक्त कर दे। विनिवृत्त कामा, विशेष निवृत्त हो जाए सब भौतिक के भोग की कामनाओं से। फिर है द्वंद्वरी मुक्ता सुख दुख संग, जिसको सुख दुख रूपी द्वंद्व कहते हैं ना, उससे ऊपर उठ जाए और असमूढ़ बने। असमूढ़ का मतलब मूर्ख न बने, तो मूर्ख के विपरीत क्या शब्द है? ज्ञानी बने हैं। मूर्ख और ज्ञानी उल्टा उसका ये है, तो फिर वो उस परम अविनाशी पद को प्राप्त करेगा। तो इसमें कितने गुण लिखे हैं शरणागति के? बोला भक्ति जब करेंगे तो कौन से गुण आएंगे जिससे हम परम पद को प्राप्त करेंगे? ये श्लोक कह रही है कि ये गुण आएंगे तो परम पद मिलेगा। अध्यात्म नित्या इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नेम बना लो, निरंतर क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, सुमरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, ये निरंतर नेम से करेंगे। ये अध्यात्म नित्या। किस प्रकार के लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं परम पद को? कौन कौन से लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं जिनमें ये लक्षण है। निर्माण का अर्थ है अहंकार को छोड़ो। बोलो वह कहां से आती है अहंकार? आता कहां से हमारा? दूसरे लोग सम्मान करते हैं, दूसरे लोग। बलदेव विद्या भूषण कहते हैं अहंकार आता है जब बहुत सम्मान से लोग हमारा व्यवस्था करते हैं तो हमको अपमान आता है। रोज रोज आपको जाते जाते प्रणाम कोई करे, एक दिन नहीं करेगा तो आपको लगेगा आज क्यों नहीं करे, आगे अपमान के नहीं आए। तो जिसको मान लेने की आदत पड़ेगी वो तो मान न मिलने के ऊपर तिल मिला के क्रोध करेगा। इंद्र की पूजा सदा कर रहे थे ब्रजवासी, नहीं पूजा भगवान ने कराई तो क्रोधित हो गया। जब इतना बड़ा देवता हो जाता है पूजा लेने की आदत ही नहीं डालनी चाहिए। पूजा लेने की आदत डालेंगे तो परेशान पड़ेंगे, नहीं आएगा तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। एक आदमी जा रहा था तीर्थ यात्रा पे तो उसे घर में गाय थी, तो उसने पड़ोसी को कहा गाय को आप देखभाल करना। तब तो यात्रा में जाते थे तो महीना लग जाता था, दो महीना लग जाता था। तो वो क्या करता था, गाय को रोज धो के दूध निकाल के कुत्ते को पिला देता था। तो लोगों ने कहा देखो तुम्हारे गाय देखे क्या है, तुम दूध पीते नहीं हो कुत्ते। बोला आपको नहीं बताऊंगा, जब मालिक आएगा गाय ले जाएगा तब बताऊंगा। मालिक आया गाय ले गया तो कुत्ता बहुत दुखी हो गया, ये दूध मिले नहीं अभी। बोला मैंने पिया होता तो मेरा ये हाल होता। भाई पराई चीज है जो पकड़ के बैठा है तो उसको तुम भोगोगे तो दुखी हो जाओगे। तो मान लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए कि लोग मेरा सम्मान करें। ये अगर मन में भाव है तो अपमान भी आपको पता लगेगा, नहीं किया तो अपमान समझ लोगे, उसको अपमान समझ लोगे। तो ये अब ये हम देखो एक व्यक्ति है हर महीने आपको 1,000 रुपये दान भेज रहे हैं, एक महीने में नहीं भेजा तो आप क्या कहोगे, आपको क्या कहना चाहिए? अरे क्या हुआ, इतना बड़ा आदमी हो गया, बस पैसा देना बंद कर दिया, अहंकार आ गया। ऐसे कहना चाहिए या 11 महीने दिया है उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसको फोन करके पूछना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आपके घर में तो ठीक है, परिवार तो ठीक है, दान का आप देते थे उसके लिए धन्यवाद, 11 वर्ष आप नहीं दे पाए, कोई संकट हो क्या, हम आपकी सेवा करें क्या, कुछ हमसे सहायता चाहिए क्या? ऐसा सोचे वो है समझदार। और कहे कि बड़ा आदमी हो गया, पहले देता था अब समझता है, बस मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आदत पड़ गई है लेने की। नहीं दिया तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांत में अंतर्गत नहीं है। तो मान से कैसे बचना चाहिए? लोग प्रणाम करते हैं, नहीं करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है प्रणाम क्यों नहीं किया, कहते हैं पूछते हैं कि आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। हाँ
तो मालूम नहीं किसको दिखाना है, सबको दिखा दिया, जिसको पहले दोस्त दिखा था उसको दिखाया नहीं।
अरे मेरे को पहले क्यों नहीं दिखाया? ये इसलिए मान की आदत नहीं डालनी पड़े, नहीं चाहिए कोई भी आदत। एक आदत रोटी की है उसकी वजह से कितने परेशान हैं, तो और जो आदत बढ़ाएंगे उतने परेशान होंगे। कम से कम के काम चले तो अच्छा है इस दुनिया में, भगवान चला तो अच्छा है। और दूसरा शब्द है मोह से मुक्त हो जाए। मोह से मुक्त हो जाए का मतलब जो सत्य नहीं है उसमें आसक्त ना हो, जो चीज सत्य नहीं है उसमें आसक्त ना हो। अब सत्य में आसक्त नहीं होना, असत में आसक्त नहीं होना, ये है मोह। और के जित संग दोष क्या है? बोला आसक्ति, सीधा लिखा है पत्नी में आसक्ति और संबंधियों में आसक्ति से मुक्त हो। अध्यात्म निद्या अपने आत्मा और परमात्मा का निरंतर चिंतन करे और सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाए। विमुक्त हा, सहनशील हो, विमुक्त कामनाओं से सहनशील हो, दुख में सुख में सर्दी में गर्मी में दोनों से मुक्त हो जाए। असमूढ़ का मतलब है ज्ञान होना चाहिए शरणागति का। ये भगवान की भाषा ऐसी है, हम कहते हैं भगवान क्योंकि बड़े उदार हैं, हमसे स्नेह करते हैं, इसलिए सीधा मूर्ख नहीं कहते हैं। असमूढ़ का मतलब जो मूर्ख नहीं है, ये ऐसे किसी आदमी को कहना कि तुम मूर्ख हो, किसी ने कहना क्या कहते, जैसे किसी को कहे कोई कहे अंग्रेजी में कोई कहे कि नॉनसेंस, तो आदमी को गुस्सा आ जाएगा कि तुम्हारा कम सेंस है, तो इतना गुस्सा नहीं है कि बात एक ही है, एक ही बात है। तुम बहुत क्रोधी हो तो गुस्सा आ जाएगा, क्रोध कम करना चाहिए, इसका मतलब ज्यादा ही कर रहे हो, बात एक ही है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मूर्ख न बने, इसका मतलब शरणागति के ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करें। प्रभुपाद जी लिखते हैं शरणागति का साधन सुंदर रूप से समझाया गया है। देखो पहली लाइन है शरणागति का साधन सुंदर रूप से यहां समझाया गया है। पहला गुण है अहंकार से विमोहित नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद लिखते हैं बद्ध जीव अहंकारी है, भौतिक जगत का अपने आप को मालिक मानता है, उसके लिए शरण लेना बहुत मुश्किल है। शरण क्यों नहीं लेता है? अपने आप को मालिक मानता है, मैं क्यों शरण लूं, क्या जरूरत है मेरे को शरण लेने की। तो ये जो बात है प्रभुपाद जी, ये है निर्माण मोह की परिभाषा। निर्माण मोह नहीं बनेंगे तो शरणागति नहीं स्वीकार करेंगे। अपने आप को मालिक मानेंगे तो दूसरे को मालिक क्यों मानेंगे। प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक ज्ञान को अर्जित करना चाहिए कि भगवान भौतिक जगत का स्वामी है, मैं नहीं हूं। जो ये बात निर्णय जीवन में करेगा कि भगवान इस जगत का स्वामी है, मैं नहीं हूं, वो किस बात के ऊपर अभिमान करेगा। आपको एक बार हमने बताया था, एक व्यक्ति छोटे गांव में बड़ा जमींदार था, सारी मार्केट के दुकान उसके थे। ऐसे बहुत से आजकल भी हम लोग जानते हैं पूरे गांव की जमीन उनकी है, लोगों को रहने के लिए दी है कि घर बनाओ रहो, जमीन हमारी है, नाम आपके नहीं होगी, जब तक रहो तक रहो। तो उसका बहुत बड़ा सारा, तो एक महात्मा उसके घर चले गए तो उसको दिखाने लगा ये सारे दुकान है ना अपने बाजार, ये अपनी है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलती हैं, सब अपनी हमारी है, ये जमीन जहाँ तक दिखती है ये सब अपनी है। तो महाराज देखा कि इस बेचारे को बड़ा अहंकार हो गया है, एक गांव छोटे के अंदर इतनी संपत्ति से इतना बड़ा अपने आप को समझता है, मैं मालिक हूँ। तो महाराज ने जो विश्व का मैप है, मानचित्र जो गोला है धरती का, बोला इसके ऊपर तुम्हारा देश कहाँ है जरा दिखाओ। तो उसके पूरे देश को तो इतना एक चोटी जितनी जगह थी, बोला इसमें तुम्हारा गांव कहाँ है, बोला नहीं है। बोला तुम्हारे गांव का तो दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तो तुम्हारा ये सामान की क्या वैल्यू क्या है, तो इतना बड़ा समझ तो मेरा इतना है, तो दुनिया कितनी बड़ी उसमें तुम्हारा नाम निशान भी नहीं। तो अहंकार बहुत बुरी चीज है और अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, भगवान अहंकार अपने भक्तों का मिटाते हैं। गरुड़ को ये अहंकार था मेरे जैसे तेज कोई नहीं चलता है, सुदर्शन को अहंकार था कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान का शस्त्र हूं, रक्षक हूं, सत्यभामा ने कहा मुझसे कोई सुंदर नहीं। तो भगवान ने तीनों को अहंकार से मुक्त करने के लिए गरुड़ को भेजा कि हनुमान को बुला दिया क्यों पुरुष लोक से। तो हनुमान को गरुड़ ने कहा चलो भगवान ने बुलाया, बोलो तुम जाओ मैं भगवान की पूजा करके आता हूँ। बोला बंदर तुम कब पहुंचोगे, बैठो मेरे पीठ के ऊपर जल्दी ले चलो। हनुमान समझ गया भगवान का वाहन के ऊपर मुझे बैठने को कह रहा है, इसका मतलब इसको अहंकार है, अपने आप को कुछ समझ रहा, समझ गया हनुमान। तो हनुमान ने गरुड़ को उठा के ऐसे पकड़ा, पानी में फेंका कि जाओ मैं अपने आप आऊंगा। हनुमान जी तो वहां से तेज गति से चले। भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा कर आप द्वारका की रक्षा करना, किसी को अंदर नहीं आने देना, सुदर्शन चक्र घूम रहा है। हनुमान ने कहा अंदर जाना, बोला नहीं जा सकते। भगवान ने मना किया, बोला मेरे को बुलाया है, गरुड़ लेने आया था, नहीं माना, चक्र को पकड़ के दांतों में दबा दिया। वो चक्कर ही जगन्नाथ के पास पड़ा, एड़ा टेढ़ा हो गया। अब हनुमान जी भगवान के वहां जाके उतरे द्वारका में, तो भगवान ने कहा बहुत बड़ा भक्त हनुमान आएगा, पूछेगा सीता देवी कहाँ। सत्यवान ने कहा मैं इतनी सुंदर नहीं हूं कि अब मुझे देख के संतुष्ट नहीं होगा का। हनुमान ने आके प्रणाम किया, बोल नहीं रहा है। बोला बोलो भगत हनुमान। बोला क्या बोल, क्या है मुंह में क्या है। सुदर्शन चक्कर को उठा के नीचे रखा, चक्कर तो बेचारा पानी पानी हो गया। फिर कहता है ये किसको अपने साथ बिठाया, कहाँ गई किशोरी जानकी। अब तो बेचारी लज्जित हो गई कि हमें तो कहता है कि कोई बैठी है ऐसे ही। गरुड़ भीगे पंखों से आया, देखा तो हनुमान जी पहले बैठा है, ये कैसे आ गए। तो उसको भी उसका तीनों का एक समय में अहंकार किया। और गुरुजनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिष्य में अहंकार ना हो, इसलिए समय समय के ऊपर उसको ऐसा काम देते हैं जिसमें वो सफल ना हो, ताकि उसका अहंकार कम हो, मैं कर सकता हूं ऐसे करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसी स्थिति में उनको डालते हैं कि उनको अहंकार न हो, ये उनका मुख्य धर्म है निम्रता सिखाना। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब तक सही वास्तविक ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे और भौतिक जगत का स्वामी भगवान है ये नहीं मानेंगे, तब तक अहंकार रहेगा। जब अहंकार से जो मोह होता है उससे मुक्त हो जाएंगे तो शरणागति शुरू हो जाएगी। तो शरणागति से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, मोह मद के या अहंकार के मोह से मुक्त होना चाहिए। जो सदा ही दूसरों से सम्मान चाहता है भौतिक जगत में, उसके लिए भगवान का शरण लेना बहुत कठिन है। अब देखेंगे अन्य स्थानों में लिखा है कि जो लोग बड़े इस पद पे हैं, चाहे बड़े पढ़े लिखे हैं या उच्च कुल में हैं, वो भगवान के शरणागत नहीं हो सकते। कुंती महारानी कहते हैं वो भी भाव से गोविंद गोपाल की उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये शरण कौन नहीं लेगा, जिसको अहंकार होगा वो शरण नहीं लेगा। और इसलिए प्रायः बड़े लोगों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है, उनको अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है। वो लोग हमको सेवक बनाना चाहते हैं, स्वयं शरण नहीं लेंगे, वो तो गुरुजी को भी सेवक बनाना चाहते हैं कि हमारी आज्ञा से जैसे हम कहें वैसे करें। और ऐसे बहुत से लोग हमको मिलते हैं, गुरुजी हमारी जेब में है, कहेंगे कहेंगे गुरुजी हमारी जेब में है, जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेंगे, अब बोलो कहाँ चलने चलना है। लोग ऐसे बोलते हुए हमने देखे हैं, हमारी जेब में है गुरुजी। तो ये जो बात है, ऐसे लोग शरणागत नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद के थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आए हो, एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाना पड़ेगा, फिर तुम इस दुनिया का मालिक बन के अपने आप को अहंकारी क्यों बना रहे हो? कितना समय यहां रहोगे? इसका स्वामी अपने आप को बनाने के लिए क्यों आपने मूर्खता कर दी? नहीं करनी चाहिए। और इसी के कारण बहुत बड़ी समस्याएं अपने लिए और संकट उत्पन्न करता है, और सारा संसार इसी विचार के कारण समस्या में घिरा हुआ है। लोग कहते हैं ये सारी धरती मानव के लिए है। धरती किसकी है? लोग सब कहते हैं धरती मानव के लिए, धरती किसकी है? भगवान की है ना, ये विष्णु पत्नी है भूदेवी। और सबने कहा कि ये दुनिया हमारी है, इसके टुकड़े टुकड़े करिए, ये तेरा राज, ये मेरा राज, ये तेरा प्लाट, ये मेरा प्लाट, ये देखो लिखा है प्रभुपाद ने। हम दुनिया के मालिक हैं, ये है मूर्खता सारी दुनिया में दिखने में आती है। जब ऐसा गलत धारणा से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और ऐसे गलत संग से मुक्त हो जाएगा, कौन सा जित संग दोष है? देखो जित संग दोष में तीन लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, ये तीन संग के दोष हैं। कौन से संग का दोष है? पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, इन तीनों के हम स्वामी बनना चाह रहे हैं, इससे कैसे बचें? ये जो गलत बंधन है संसार में, वही हमको भौतिक जगत में बांध के रखते हैं। हमको इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, और वास्तविक ज्ञान वो है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो दिखाए। भाई ये घर, दुकान, मकान, ये शरीर, ये सब असत्य है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और जो सत्य है भगवान, उसके साथ अपना संबंध स्थापित करें। और जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तो द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा, सुख दुख से, गर्मी सर्दी से, मान अपमान से मुक्त हो जाएगा। और ये तब संभव है जब पूर्ण ज्ञान से पूर्ण शरणागति लेगा। यह हमारा ये विभाग पूरा होता है, दूसरा विभाग शुरू हो रहा है, और दूसरे विभाग का नाम है पुनर्जन्म। अगर नहीं संसार के वृक्ष को असंग शस्त्र से काटेंगे तो बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और बंदर की तरह, बंदर के समान एक डाली से दूसरी डाली तक ऊपर नीचे कूदते रहना पड़ेगा। कभी ऊपर जाएंगे स्वर्ग में ऊपर की डाली में, कभी नीचे की डाली में, ऐसे घूमते रहेंगे संसार वृक्ष में। तो ये पुनर्जन्म का जो दूसरा विभाग है 6 से 11 तक, परंतु इसमें पहले श्लोक में भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं। धाम के तीन अर्थ हैं, शब्द संस्कृत धाम का अर्थ है प्रकाश, धाम का अर्थ है स्वरूप, और धाम का अर्थ है धाम, मतलब भगवान का निज धाम। तीन अर्थ हैं,
प्रकाश, स्वरूप और भगवान का
निज निवास, क्योंकि एक तो आचार्यों ने भगवान के स्वरूप बोल दिया है, भगवान के ब्रह्म ज्योति को भी धाम बोला है, भगवान का प्रकाश भी धाम है, भगवान भी धाम है और भगवान का निवास भी धाम है, तीनों धाम है। लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवान के धाम को ही धाम लिया है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परम मम। जहाँ न सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, न चंद्रमा के चांदनी की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। तो अब ये प्रश्न उठता है, पहला प्रश्न क्या उठा कि वहां जाने वाले में कौन से गुण चाहिए, जो क्षण लेगा उसके गुण क्या है। अब कहते जहां जाए, जिस जगह जाएगा उसके लक्षण क्या है, जिस स्थान पे जाएगा तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, जो तत्पदम है ना वो क्या है। ये जो चौथे श्लोक में तत्पद शब्द है ना वो क्या है, वो स्थान क्या कौन सा है, वो पद क्या है जहां जाने के बाद वापस नहीं आता। उसका उत्तर है ये कि वो ऐसी जगह है जहां सूर्य चांद ये नहीं है, क्योंकि वो अपने आप स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित है, आत्मनिर्भर है, दुख रहित है, वहां सूर्य ही नहीं है तो गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां सूर्य नहीं है तो गर्मी सर्दी कहां से आएगी भाई, गर्मी सर्दी तो सूर्य कैसे आती है, बोले वहां कोई दुख नहीं। तद धाम परमम मम, तो धाम का एक अर्थ है प्रकाश, वो आध्यात्मिक है, भौतिक इंद्रियों से परे है, और जो मुझसे संबंधित है उन सबको प्रकाशित करता है माम। हरिवंश पुराण में लिखा है तत्परम परमं ब्रह्म सर्वं विभज्यते जगत, और फिर ममैव तदघनं तेजो ज्ञात्महर्षि भारत। वो जो परम ब्रह्म प्रकाशमय है जिससे सारा जगत प्रकाशित है, आप जानो कि वो घनीभूत मेरा प्रकाश है भारत। और कठोपनिषद में भी ये है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमे विद्यतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तुम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम भाति। लिखा है ना, ये यहां लिखा है, इसका अर्थ है कि वहां ये कुछ नहीं है, वो अपने आप प्रकाशित है। अब भगवान उस पद का वर्णन कर रहे हैं जिसको जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। वहां कौन रहता है, पुरुषम पुराणम, कौन है, बोला लक्ष्मीपति वहां रहता है। और शरणागति से प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी क्या लेते हैं, कृष्ण जहां रहते हैं वो कृष्ण गोलोक और वृंदावन का यहां वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक जगत में प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है। एक ही ऐसा जगत में, एक ऐसा लोक है जो स्वयं प्रकाशित है इस जगत में, कौन सा, सूर्य। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, बाकी सबको प्रकाश की जरूरत है। परंतु वैकुंठ में सभी अपने आप प्रकाशित हैं, और जो प्रकाश है वैकुंठ का उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है। प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में वो ब्रह्म ज्योति कृष्ण लोक से प्रकट होती है, भगवान के श्री अंग से निकलने वाली कांति है, और वही सर्वत्र सर्वत्र फैली हुई है। उस प्रकाश के ऊपर कोई एक छोटा सा बादल आ जाता है ना, वो महत्तत्व का बादल आता है, उतना ही टुकड़ा भौतिक जगत कहलाता है जो अंधकारमय है। एक अन्य स्थान पर प्रभुपाद ने लिखा है, ये आकाश बिल्लू क्यों नजर आता है? ये तो हुआ विज्ञान की बात। यहाँ कहाँ समुद्र है, यहाँ भी बिल्लू दिख रहा है। बोला श्री कृष्ण के बिल्लू शरीर से, तो बिल्लू है ना कृष्ण, उससे जो किरणें निकलते हैं उसकी परछाई, इससे किसके पीछे वो किरणें हैं, इसलिए बिल्लू दिख रहा है आकाश। एक जगह प्रभुपाद ने लिखा एक तात्पर्य में, सारा ब्रह्मांड में समुद्र का नीला छाया है कि समुद्र पति भगवान का नीला रंग है। वैसे पानी समुद्र का नीला नहीं होता है, नीला क्यों दिखता है? आकाश, आकाश उसकी वजह से दिखता है, वो उठा के देखो तो सफेद है, तो नीला आया कहां से? ये भगवान नीला है जी, ये समझ में नहीं आता है। ये गहराई में प्रभुपाद जी कभी कहते हैं वो नीला भगवान है श्याम, उसी के कारण ये सब कुछ श्याम है। अब तीन चौथाई जो आध्यात्मिक जगत है वो तो स्वयं प्रकाशित है, एक चौथाई भौतिक जगत वो अंधकारमय है, वहां सूर्य चांद की जरूरत है। जब तक कोई भौतिक जगत में है तब तक बदजीव है, और जैसे आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो इस प्रतिबिंब रूपे अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वहां जाएगा तो फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आएगा। इस बद्ध अवस्था में सभी लोग अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानते हैं, परंतु मुक्त अवस्था में भगवत धाम जाएंगे तो सबको भगवान का पार्षदत्व प्राप्त होगा, और वहां सच्चिदानंद जीवन है। और प्रभुपाद जी कहते इस समाचार को सुन के वहां जाने के लिए इच्छा होनी चाहिए, इतना सारा समाचार मिल रहा है। तो यहां से समाचार मिलता है अमेरिका में ज्यादा पैसा मिलते हैं, जीवन का स्तर अच्छा है, भाई वहां तो लोग सब अमेरिका जाना चाहते हैं कि भाई वहां। तो जब इतना सारे समाचार मिल रहा है कि भगवान के धाम में कुछ जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपको बिजली का बिल आएगा नहीं कभी, पानी का बिल आएगा नहीं कभी, बूढ़े कभी होंगे नहीं, तो वहां क्यों नहीं लोग जाना चाहते? प्रभुपाद क्या लिखा है, इस शुभ समाचार का लोगों को लाभ लेना चाहिए, लिखा है ना। इससे ऊपर क्या लिखा है, वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन, इसका मतलब इस जानकारी से वहां मुक्त होना चाहिए, मतलब वहां जाने की इच्छा होनी चाहिए, और वहां जाने की जाएंगे तो फिर भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो आसक्त अधिक है इस भौतिक जगत में, आसक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है, परंतु कोई कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेगा तो धीरे धीरे अनासक्त हो जाएगा। अच्छा, धीरे धीरे अनासक्त कैसे हो जाएगा कृष्ण भावना में आएगा तो? कृष्ण भावना में लगने से धीरे धीरे भौतिक जगत से असाक्त अनासक्त हो जाएगा। कैसे, क्यों?
इंद्रिया सुखी हो जाएगा, अच्छा रस जब प्राप्त होगा तो जो नीचा वाला रस है वो चला जाएगा,
ऊपर का रस मिलेगा तो नीचा रस छोड़ देगा, क्योंकि कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी तो जगत से अपने आप अनासक्त हो जाएगा। कृष्ण भावना में कृष्ण में आसक्ति होगी, जो कृष्ण में आसक्ति हो गई तो जगत से अनासक्ति के लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कृष्ण में आसक्त होना है और कृष्ण का नाम ही सर्व आकर्षक है और हम आकर्षक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था में आते जाए और कृष्ण भावना के कार्य से हम शुद्ध होते जाएंगे तो अपने आप कृष्ण में आकर्षित होते जाएंगे। जितनी मात्रा में कृष्ण में आकर्षित होंगे उतनी मात्रा में अनासक्त हो जाएंगे जगत से। बहुत सरल बात है। एक उदाहरण हम बहुत पुराने जमाने में दिया करते थे, आपको याद है, कृष्ण आकर्षित है और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हमको कृष्ण की ओर आकर्षित होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहे बद्ध जीव? एक उदाहरण दिया करते थे हम, चुंबक लोहे का बना है, चुंबक लोहे का है और लोहे की छोटी कील उसको चपकनी चाहिए ना अपने आप। भाई कोई भी आप चुंबक लेके ऐसे लगाओ जितनी कील है उसमें चमक जाए कि नहीं? तो ये स्वाभाविक है, चुंबक के निकट आते ही चमक जाए। परंतु एक कील ऐसी है जिसके ऊपर जंग लगा है, बरसात में मिट्टी लग गई है, वो चुंबक के ऊपर रखोगे तो भी नहीं चुपके, ऐसे है कि नहीं? अब क्या करना चाहिए? चुंबक में कमजोरी है क्या? नहीं, कील के ऊपर कचरा है तो उसके ऊपर वो एक रेगमाल ले आओ, क्या कहते हैं उसको, सैंड पेपर घिसने का, लेकिन पेपर अपने आप नहीं घिसेगा, घिसने वाला चाहिए, घिसने वाला उसके ऊपर से जंग उतारेगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप जाके चुंबक को चपकेगा, चपकेगा कि नहीं चपकेगा? तो ये कृष्ण भावना को शुभारंभ करना है गुरु के माध्यम से, मैल उतारना शुरू करना। और रेगमाल हमारा ये महामंत्र जपते हैं ना, ये चेतो दर्पण मार्जन करता है और जैसे उतर जाएगा अपने आप कृष्ण में आकर्षित हो जाएंगे, फिर कोई पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं। तो ये धुलाई होना बहुत जरूरी, और धुलाई आपने देखा है जो चुंबक में एक लगा दो फिर उसके साथ 10 20 25 लंबी लंबी लाइन हो जाएगी, ये हो गई परंपरा, एक को पकड़ो दूसरे को पकड़ो अपने आप तुम्हारे को उससे जोड़ देगा, ये परंपरा होगी। तो ये जो नहीं क्यों जाते, कृष्ण भावना में भावित होने से, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कृष्ण भावना में भावित होने से कृष्ण में आसक्त होंगे तो जगत से अपने आप अनासक्त हो जाएंगे। ये नहीं लिखा है कृष्ण में आसक्त होंगे, ये लिखा है कि जगत से अनासक्त होंगे। कारण क्या? कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। व्यक्ति को अपने आप भक्तों का संग करना चाहिए जो कृष्ण भावना में है। ये फल प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना भावित भक्तों का संग स्वयं को करना चाहिए। कृष्ण भावना संस्था कहाँ है उसका पता लगाना चाहिए और वहां जाके भक्ति के भक्तिमय सेवा में लगना चाहिए। ऐसे वो भौतिक जगत से अपने बंधन को काट सकता है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, केवल गेरू कपड़ा पहने से कोई त्यागी नहीं बन सकता, लाल कपड़े पहनने से कोई त्यागी नहीं बन सकता। भक्ति में आसक्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति में आसक्त होना चाहिए, इसलिए गंभीरता से भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, जैसे 12वें अध्याय भगवद गीता में बताया गया है। तभी इस भौतिक जगत के प्रतिबिंब रूपी अश्वत्थ वृक्ष से मुक्त होंगे। 14वें अध्याय में यह बताया गया है, भौतिक सारे क्या लिखा है,
विधियां दूषित हो जाती है,
क्या दूषित
भौतिक भक्ति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती
है, भगवत भक्ति द्वारा भक्ति शुद्ध है,
भक्ति
भौतिक क्या लिखा है, चौदहवें अध्याय में क्या लिखा है, चौदहवें अध्याय में सब प्रकार के जो विधियां
भौतिक भौतिक के द्वारा सारी विधियां दूषित है, ये जो भौतिक जो विधियां दूषित है, जो भौतिक की वस्तु है,
the contamination of all kinds of process of material nature is described. विधि शब्द ठीक नहीं, विधि होती है किसी बंधन से छूटने के लिए, प्रोसेस को विधि तो लिखा है लेकिन यहाँ विधि इसका भाव नहीं है, ध्वनित नहीं हो रहा है। चौदहवें अध्याय में सब प्रकार के भौतिक जगत के दोषों के दोषों का वर्णन है, प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस कैसे, नहीं वो तो बंधन का, बंधन के लिए तो नहीं है ना, ये तो बंधन है, इसे लिखा तो क्या दूषित का बात लिखा है, मुक्ति का बात नहीं लिखा है। भौतिक जगत में जितने भी दोष हैं वो हैं प्रकृति के तीन गुणों के कारण, जिसके कारण ऊंच नीच चूनियों में जाता है कोई, इसका वर्णन हो चुका है, और एकमात्र भक्ति से ही शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते। परम मम का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थ है कि जो कुछ संसार में एक इंच भी जमीन है वो भगवान की है, परंतु भगवान का अपना आध्यात्मिक जगत षड ऐश्वर्य संपन्न है, सब कुछ भगवान का, परंतु भगवान का धाम इससे परम है, तो ये वो परम है तो ये क्या है, परम नहीं है। कठोपनिषद का वो श्लोक लिखा है और फिर कहा केवल शरणागति से उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं और कोई साधन नहीं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसिष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। ममैवांशो जीव लोके, जिस लोक में जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं और ये जीव सारे सनातन हैं, जीव भूत सनातन है। मन शिष्टान इंद्रिया, मन और पांच इंद्रियां विशेष रूप से ज्ञान इंद्रियों का वर्णन है, परंतु च शब्द है, मन षष्ठ इंद्रियाणी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन शिष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करिष्यति। मन और पांच ज्ञान इंद्रियां कहां से प्राप्त हुई, प्रकृति से, इसके कारण क्या हो रहा है, कर्षण हो रहा है, इसका मतलब जन्म जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, कर्षति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना। क्या शब्द अर्थ में लिखा है, किस चीज का, जीने का, जी सकता नहीं है, मरेगा फिर जन्म लेना पड़ेगा, यही चक्कर चलेगा, कौन सा जीव जो शरणागति करके उस पदम परम पद को प्राप्त करेगा, जीव कौन है, जीव क्या है, तब कहते ब्रह्म भूया ये कल्पते जो लिखा था उसमें, वो कौन सा जीव है जो उस स्थिति को प्राप्त करता है, तो यह जीव के लिए प्रश्न पूछा गया है, ये पहले पूछा गया है प्रश्न, हमने ये अध्याय शुरू किया तब प्रश्न पूछा गया था, वो कौन सा जीव है जो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, परम पद को कौन प्राप्त करता है। वारा पुराण में लिखा है भगवान के दो प्रकार के अंश हैं, एक स्वांश है और एक विभिन्न अंश है, स्वांश है विष्णु और विभिन्न अंश को जीव कहते हैं, वह शब्द लिखा है ये विभिन्नांश तो जीव स्यात, जो विभिन्न अंश है उनको जीव कहते हैं, स्वांश को भगवान के विष्णु तत्व कहते हैं, तो दो प्रकार के अंश हैं, जीव है सनातन परंतु बद्ध अवस्था में अपनी इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं सदा ही मोह में रहता है। कैसे बंधा होता है? बोला जैसे किसी व्यक्ति के पांव में बेड़ियां बंधी हुई हो, जंजीर है, उसके साथ चले, ऐसे इनके साथ चलता है बंधा हुआ। ये जंजीरों का काम करते हैं। बोला वो जंजीरें कौन सी हैं? वो जंजीर मन और पांच इंद्रियों की जंजीरें कौन सी है? विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं, अहंकार से स्वीकार करता है ये मेरा है, ये है जंजीर, ये घर मेरा है कि ये कमरा मेरा है, ये चीज मेरी है, ये है जंजीर, ये जंजीर है। जंजीर कौन सी है?
अहंकार।
किसमें? ये मेरा है, ये मेरापन का अहंकार ही जंजीर है जो बंधन में ढल के बैठी है। जीव मेरा अंश है, मेरा ही अंश है, शंकर ब्रह्मा जी और किसी देवता का अंश नहीं है, मेरा केवल एकमात्र अंश है, एव का अर्थ ये है। और जीव सनातन है, इसका अर्थ है किसी समय पैदा नहीं हुआ है, ये नित्य है। वो शंकर आचार्य का भाव है, इसको बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, क्योंकि उस समय प्रचलित है कि दो दो एक सिद्धांत हैं मायावादियों के, एक है प्रतिबिंब सिद्धांत कि ब्रह्म ऊपर है जगत में, उसका केवल प्रतिबिंब है, और दूसरा है आच्छादित ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर भौतिक शरीर आ गया है तो बंध गया है, शरीर टूट जाएगा तो ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाएगा, जैसे बर्तन के अंदर खाली जगह है, बर्तन टूट गया तो सब आपस में मिल गया। तो वो जीव को दो 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 प्रकार से ज्ञानी जीव का वर्णन करते हैं, एक आच्छाद्यवाद ब्रह्म आच्छादित, दूसरी प्रतिबिंबवाद। परंतु ये श्लोक उन दोनों का खंडन करता है कि सनातन है तो बर्तन टूट से एक कैसे होगा, है ही सनातन। और दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है, मेरे ममान वो 14वां श्लोक कौन सा है? 14 मेरे ख्याल में 14वां है, कौन सा है? नहीं तुम नहीं, फिर तो इससे पहले देही नो अस्मिन यथा देहि, 11 है, 13 देही नो अस्मिन दे यथा देहे भी इस बात का प्रमाण है कि हर देही में एक आत्मा है तो सनातन है। तो ये जो दो सिद्धांत है मायावादियों के, ये श्लोक उसका खंडन करता है। अब थोड़ा सृष्टि का यहां क्रम लिखा है, आप 2 मिनट इसको जानना चाहें थोड़ा सा। ये इंद्रियां क्या है जिससे बंधा हुआ है? भाई इंद्रियां मनसिष्टान इंद्रियां जो कहां से आए? बोला प्रकृति से आए। बोला कैसे आए? बोला प्रकृति से पहले अहंकार निकला और अहंकार सतोगुण में हुआ तो मन, अहंकार रजोगुण का हो गया तो इंद्रियां, ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि का क्रम है, प्रकृति से पहले अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार सात्विक होता है तो मन, और राजसिक होता है तो इंद्रियां, और तामसिक होता है तो फिर और कुछ चीजें क्या है, आज फिर उनके विषय इंद्रियों के प्रकट होते। और जब हम शरण लेते हैं तो ये भौतिक इंद्रियां हमारी यहीं रह जाती हैं और हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप में भगवत धाम जाएंगे, तब हमारा आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक इंद्रियां होंगी और वहां जाके भगवान की सेवा में लगेंगे। और ये प्रभुपाद ने भी दिया है, माध्यायनंदी अनन्य श्रुति, एक श्लोक दिया है देखो, सवाएश ब्रह्म निष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम अतिश्रियते अति अतिसृज्य ब्रह्मा अभिसंपद्यते ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणः शृणोति ब्रह्मणैव तेदं सर्वमनुभाति। भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर जब प्राप्त होगा तो भगवान को देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, प्रभुपाद जी के लिखेंगे, आमने सामने मिलेंगे, ब्रह्म के स्तर पे आएंगे तब। बलदेव विद्याभूषण ने एक दो श्लोक दिए हैं और ये दो मत दिए हैं। अब हम प्रभुपाद जी के, थोड़ा लंबाई दिया है, ब्रह्म की शक्ति है जीव, और 7-5 में शक्ति ही कहा गया है, जीव भूता महाभाव। कब तक करशति कब तक रहेगी, करशति का मतलब खींचा तानी, कब तक रहेगी, संघर्ष कब तक रहेगा, हमारी अपनी परिभाषा है। पहले श्लोक, पहली लाइन क्या है श्लोक की, ममाइवांश जीव लोक के, जो जीव आत्मा मेरे अंश है। दूसरी लाइन में क्या है, जो जीव है ना वो सनातन है, उसको भूत लग गया है। भूत लग गया का मतलब भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। जब किसी को भूत लगता है ना संसार में, तो वो अपने आप को भूल जाता है और जो भूत है ना उसकी भाषा बोलता है। तो हम आत्मा है, कृष्ण के दास हैं, हमको ये शरीर का भूत लगा है। हम कहते हैं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये देश का हूं, ये भूत लगा हुआ है। तो ये भूत उतरेगा तो कर्षति खत्म हो जाएगा, ये मैं और मेरे का भूत लगा हुआ है। तो जिसको लगता है भूत, वो अपनी असली पहचान तो कर नहीं सकता है, तो बेचारा दुख ही भोगेगा। जिसको भूत लगता है वो दुख भोगता है। तो हमको लगा है भूत, कौन सा भूत, ये 5 शरीरों का, 5 तत्वों का शरीर वाला भूत। तो जो भूत में बंधा हुआ जीव है वो सनातन है, भूत भी सनातन है, परंतु भूत इसका नहीं। एक शब्द ईशो उपनिषद में प्रभुपाद ने लिखा है, इनकॉम्पिटेबिलिटी ऑफ द सोल एंड द मटेरियल नेचर। इनकॉम्पिटेबिलिटी किसको कहते हैं, जैसे शादी हो, पति पत्नी में झगड़ा है, वो साथ रह ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा ना। तो हमारे को, हम इस शरीर के साथ रह ही नहीं सकते, ये कभी भी, ये क्या है, तलाक के बिना कोई रास्ता नहीं। इस शरीर को तिलांजलि देनी पड़ेगी, नहीं तो असली स्वरूप नहीं मिलेगी, परंतु एकदम नहीं दे सकते, तो उसके लिए प्रोसेस है। ये जीव और शरीर का तालमेल आपस में बैठेगा ही नहीं। ये भले मिले हुए हैं आपस में, विवाह कर दिया है इनका भगवान ने, लेकिन ये साथ रह नहीं सकते, ये इनकॉम्पिटेबल है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इसकी विदाई बहुत जरूरी है। और इसकी विदाई कैसे करेंगे, आस्ते आस्ते भक्ति के माध्यम से बंधन से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इस श्लोक में जीव के वास्तविक पहचान स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जीव एक भगवान का अंश है। चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो, परंतु रहेगा अंशी, क्योंकि सनातन है। मुक्ति के बाद एक नहीं हो जाएगा, तब भी अलग रहेगा, व्यक्ति रहेगा। और वेदों में भगवान के 2 प्रकार के विस्तार है, स्वांश और विभिन्नांश, विष्णु तत्व और जीव। जीव भगवान से अलग उनके अंश है, जो उनके विच्छेद उनसे होते हैं, और जो स्वांश है वो राम नरसिंह आदि है, वो वैकुंठ में रहते हैं। जीव है जो भगवान के नित्य सेवक है, जैसे भगवान के स्वांश व्यक्ति हैं, ऐसे जीव भी व्यक्ति हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। भगवान का अंश है, इसलिए एक गुण भगवान का मुख्य है, कौन सा, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान का एक गुण थोड़ी मात्रा में उससे है, बहुत मुख्य है, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्र का दुरुपयोग करेगा तो बंधेगा, और सदुपयोग करेगा तो मुक्त हो जाएगा। किसी भी स्थिति में चाहे बंद हो या मुक्त हो, जीव गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, नित्य है, गुण के हाँ। और जब मुक्त हो जाएगा तो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और भगवान की दिव्य सेवा में लग जाएगा और भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण वो दिव्य सेवा को भूल जाता है। कारण क्या है? संसार में संघर्ष करता रहता है। केवल मानव नहीं, कुत्ता बिल्ले गधा सभी संघर्ष कर रहे हैं। ब्रह्मा से देखे शंकर तक सभी संघर्ष कर रहे हैं। प्रभुपाद ने एक शब्द बहुत भारी लिखा है, देखो देखो तो ब्रह्मा शिव और यहां तक के विष्णु तक सभी भगवान के अंश हैं। वो विभिन्न अंश हैं, वो स्व अंश है, ऐसे मानेंगे और क्या है, बहुत आसान है। ये नित्य है, ये अस्थाई नहीं है। कर्षति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ है संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है। किसने बांधा है? अहंकार ने बांधा है और मन उसमें मुख्य प्रमुख है। उसी के कारण भौतिक ये जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। सात्विक मन होगा तो सात्विक कर्म करेगा, राजसिक मन होगा तो राजसिक कर्म करेगा, तामसिक मन कर्म होगा तो नीचे की जूनियों में ले जाएगा। इस जगत में हमारे ऊपर भौतिक शरीर है, इंद्रियां हैं, परंतु जब ये छूट जाएंगी तो हमारे अपने आध्यात्मिक शरीर और इंद्रियां प्रकट हो जाएंगी और ये फिर वो माध्यानी माध्यायधीन आयन, माध्यान दीनायन श्रुति का श्लोक लिखा है, उसका अर्थ क्या लिखा है पढ़िए जरा। और फिर लिखा है फिर भगवान को सुन सकता है, भगवान को आमने सामने देख सकता है और भगवान को अच्छी तरह से समझ सकता है जैसे भगवान है। और स्मृति में भी इसका लिखा है वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, ये तीसरे स्कंद भागवत का श्लोक है, तीसरे स्कंद भागवत का श्लोक है। वहां सब चतुर्भुज रूप में विष्णु के रूप में वैकुंठ में रहते हैं। अब क्या लिखा है प्रभुपाद ने, एक शब्द देखो, इसका मतलब जीव आत्मा और कहा जाए कि नारायण में और जीव में एक गुण के मात्रा में कोई अंतर नहीं, दोनों सच्चिदानंद है। इसका अर्थ है मुक्ति के समय जीव आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेगा भगवान की कृपा से। ममई वंश बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ ये नहीं कोई टुकड़ा है भगवान से अलग हो गया है। दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि जीव को काटा नहीं जा सकता है, ये भौतिक नहीं है, ये तोड़ तोड़ के जोड़ा नहीं जा सकता है, ये विचार यहां नहीं चलेगा। संस्कृत में सनातन शब्द का अर्थ है वो नित्य है और दूसरे अध्याय में ही कहा है देहिनो अस्मिन् यथा देह। हमें भगवत जागरण धाम में जाके आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं, क्या सोना और सोने का टुकड़ा एक ही बात है, ऐसे हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यह कथा पूरी होती है, कल 8वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। शरीरम यद्वापनोति चापि उत्करा मतीश्वरा गृहीत्वा निसंयाति वायुर्गंधा निवास। तो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव कैसे जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हरे कृष्ण। चले हमने 3 4 5 6 7